ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता अदालत का आयोजन किया। दिल्ली भाजपा ने किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बिजली कनेक्शन मुहैया करवाने और म्यूटेशन को पुनः लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करने के लिए आभार सभा का आयोजन किया। हरियाणा में 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम मशीनों को विभिन्न जिलों के संबंधित स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के बीच उच्च शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक समझौता हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ एक विशेष अभियान के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों से ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप के माध्यम से घर से ऑनलाइन कार्य और हरिद्वार के पतंजलि वेलनेस सेंटर में कमरा बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन मामलों में इस्तेमाल कथित बैंक खातों में लेन देन और रखे गए लगभग 2.5 करोड़ रुपए भी पाए गए। आम आदमी पार्टी ने आज शहर के छत्रसाल स्टेडियम में जनता अदालत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के लोगों के जीवन में सुधार और बड़े बदलाव हुए हैं।
दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल जीरो आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहाँ पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहाँ माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार।
इस अवसर पर श्री केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में जनता को सस्ती बिजली और शिक्षा मुहैया कराई है। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने कितने राज्यों में हमारे बराबर काम किया है।
देते हैं इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं। इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो, एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो। इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे, इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे।
दिल्ली भाजपा ने राजधानी दिल्ली में किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बिजली कनेक्शन मुहैया करवाने और म्यूटेशन को पुनः लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करने के लिए एक आभार सभा का आयोजन किया। शहर के बुराड़ी के मुकुंदपुर चौक में आयोजित इस सभा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदोलिया, मनोज तिवारी सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन फैसलों से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वसीयत का कार्य शुरू हो जाएगा और वहीं अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उससे उन्हें राहत मिलेगी।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली गांव देहात की और दिल्ली के अनुसाइज कॉलोनी की दो समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हुई है। दिल्ली के गांव देहात में मोटिशन की वजह से बहुत दिक्कत थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम नहीं कर पा रहे थे। लगातार माननीय उपराज्यपाल जी से हमारे सांसद और हम आग्रह कर रहे थे और हमें उसमें सफलता मिली है। अब गांव से वो मोटिशन की बाध्यता हटा दी गई है। अब जो गांव देहात के भाई बहन है वो अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं।
वहीं नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से दिल्ली के 3.5 लाख लोग अब इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
हम सब जानते हैं कि 3.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक निर्णय ने रोशनी का उपहार दिया है। दिवाली के आने से पहले दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वासियों के घरों में सुनिश्चित करी है।
दिल्ली भाजपा ने अपने झुग्गी विस्तार अभियान के अंतर्गत आज शहर के 203 झुग्गी क्लस्टरों में रहने वाले बच्चों के बीच खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाया। पार्टी के अनुसार इस अभियान के जरिए कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और शतरंज जैसे कम खर्च वाले पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया। भाजपा ने बताया कि वे इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पार्टी झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों, युवाओं एवं महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को विभिन्न जिलों के संबंधित स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया है। स्ट्रांग रूम 8 अक्टूबर को चुनाव अधिकारी, उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा। इससे पहले कल हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 67% मतदान दर्ज किया गया है। हरियाणा के प्रमुख सचिव TVSN प्रसाद ने बताया कि मतदान के दौरान कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई, साथ ही उन्होंने सफल चुनाव संचालन के लिए चुनाव आयोग का आभार भी प्रकट किया।
कोई इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से वोटिंग रुक गया हो या वोटिंग करने में कोई बाधा आया वो है, बट साथ में मैं इलेक्शन कमीशन का लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मार्गदर्शन हमें दिया समय समय पर, फुल कमीशन भी यहाँ आए थे हमें गाइड करने के लिए और समय समय पर उनके अफसर आते रहे अधिकारी, और जो बहुत ही अच्छा सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने एक तंत्र ढांचा को चलाया, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक मिसाल है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध कराने की जांच के सिलसिले में कई ठिकानों पर तलाशी ली है। NIA ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 26 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर, असम में ग्वालपाड़ा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जालना और मालेगांव में, जम्मू कश्मीर के रामबन में और दिल्ली में की गई। छापेमारी के दौरान NIA को मिले दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जा रही है। संदेह है कि इस मामले में शामिल संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें भारत में आतंकी हमले करने और आतंकवादियों से जुड़े दुष्प्रचार में लिप्त थे। उन्होंने जैश ए मोहम्मद से प्रेरित जमात गुट में युवाओं की भर्ती भी की थी। दिल्ली पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध हथियार की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 16 हथियार बरामद किए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी है। इनमें पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली और मराठी भाषाएं शामिल हैं। भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चामू कृष्ण शास्त्री ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से युवाओं के लिए इन भाषाओं के साहित्य को समझना आसान होगा। आज विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस है। ये दिवस सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित प्रतिभाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क में क्षति से पैदा होने वाली समस्या है। ये क्षति जन्म से पहले, प्रसव के दौरान या जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। आज सेरेब्रल पॉल्सी दिवस पर देशभर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली और नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के बीच उच्च शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक समझौता हुआ है। एम्स में प्रोफेसर और मीडिया सेल की प्रमुख डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार को एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास और नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के निदेशक प्रोफेसर पूर्वी पोखरियाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह समझौता दोनों के लिए ही बेहद कारगर सिद्ध होगा।
ये एमओयू इसलिए साइन किया गया है सो दैट हम कई ज्वाइंट प्रोग्राम शुरू करें जिससे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं एंड प्रमोट कर सकते हैं, जैसे एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम, जैसे एमएससी इन फॉरेंसिक नर्सिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम ज्वाइंट कोर्सेज शुरू करें एंड इन एडिशन टू दैट हेल्प इन रिसर्च, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइबर सिक्योरिटी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेंसिक नर्सिंग, टॉक्सिकोलॉजी एंड लीगल मेडिसिन।
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत बीए और बीकॉम पाठ्यक्रमों के लिए चल रहे दाखिलों का आज अंतिम दिन है। एनसी वेब के अनुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेश आज मध्यरात्रि तक संबंधित शिक्षण केंद्रों पर लिया जा सकता है। इससे पहले बोर्ड ने विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 5 कट ऑफ लिस्ट जारी की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड संस्थागत सहयोग के सभी पारंपरिक मॉडल को खारिज करता है और इस वजह से ये बहुत नवीन है। नई दिल्ली में तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में एक संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि ये फायदेमंद है कि क्वाड केवल सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्यों के लिए बना संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख तंत्रों में से एक है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये महत्वपूर्ण है कि भारत सभी प्रमुख देशों से जुड़ा है और उसे वैश्विक राजनीति के प्रति अधिक जिम्मेदारी की भावना वाले देश के रूप में देखा जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में जो देश बदलाव ला सकते हैं उन्हें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं पर डॉ जयशंकर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का स्तर ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां किसी भी गंभीर मुद्दे को किसी क्षेत्र में शामिल करना मुश्किल है। मंत्री ने कहा कि कृत्रिम मेधा यानी एआई वैश्विक व्यवस्था में सबसे गहरा कारक बनने जा रहा है। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लगभग 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद तथा नीति निर्माता एकजुट होते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ मोहम्मद मोइजू की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापक द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज उनसे मुलाकात करेंगे। कल डॉ मोहम्मद मोइजू का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉ मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित 24वें लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। 2 सप्ताह के अंत में आयोजित इस टूर्नामेंट में 1200 से अधिक गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस वर्ष टूर्नामेंट में 16 वर्षीय प्रीति सिंह करायत ने जीत हासिल की। इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रीतिश को इस जीत पर बधाई दी। उपराज्यपाल ने यह आशा व्यक्त की है कि भविष्य में प्रीतिश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता अदालत का आयोजन किया। दिल्ली भाजपा ने किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बिजली कनेक्शन मुहैया करवाने और म्यूटेशन को पुनः लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करने के लिए आभार सभा का आयोजन किया। हरियाणा में 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम मशीनों को विभिन्न जिलों के संबंधित स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के दिल्ली कैंपस के बीच उच्च शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए समझौता हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।